हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कुछ देर तो कबीर खामोश बैठा उसे ऑब्जर्व करता रहा, फिर उसने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ अर्णव, इतना रेस्टलेस क्यों है तू? अगर कोई बात है तो मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई हेल्प कर सकूं। अर्णव कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, शायद निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था कि उसे अपनी परेशानी बताए या ना बताए। अंत में उसने बताने का फैसला किया और उलझन भरे स्वर में बोला, कल धृति का बर्थडे है। अर्णव की बात सुनकर कबीर ना तो चौंका और ना ही उसने कुछ खास रिएक्ट किया। शायद वो ये बात पहले से जानता था, पर वो ये नहीं समझ सका कि अर्णव आखिर इतना परेशान है क्यों, और भौं उठाते हुए उलझन भरे स्वर में बोला, तो मुझे उसके बर्थडे पर उसके लिए कुछ स्पेशल करना है, कुछ ऐसा जिससे उसका ये बर्थडे उसके लिए यादगार बन जाए, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं उसके लिए। अर्णव ने अपनी परेशानी उसके सामने रखी और चिंतित सा उसे देखने लगा। अर्णव की परेशानी की वजह समझते हुए पहले तो कबीर चौंक गया, फिर शरारती मुस्कान लबों पर सजाते हुए शैतानी भरे लहजे में बोला, अपना लव कन्फेस कर ले, जिंदगी भर कल का दिन नहीं भूल पाएगी वो, इसकी गारंटी मैं तुझे देता हूँ। इतना कहकर वो ठहाके लगाकर हंस पड़ा। बड़ा मज़ा आ रहा था उसे अर्णव को छेड़ने और परेशान करने में। कबीर का जवाब सुनकर अर्णव ने आंखें छोटी छोटी करके गुस्से से उसे घूरा और खींचते हुए बोला, बकवास मत कर कबीर और तमीज़ से बात कर, भाभी है वो तेरी। अर्णव के शब्द उसके कानों में पड़े और उसके साथ ही कबीर के चेहरे के भाव बदल गए। वो हंसते हंसते रुक गया और भौं उठाते हुए गंभीरता से बोला, अच्छा तूने कभी उसे अपनी वाइफ होने की इज्जत दी जो मुझसे रेस्पेक्ट की डिमांड कर रहा है? कबीर, अर्णव ने झल्लाते हुए गहरी आवाज में उसे पुकारा, जैसे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा हो। उसकी घूरती निगाहें अब भी कबीर पर टिकी थीं और चेहरे पर आत्मग्लानि के भाव उभर आए थे, जिसे देखते हुए कबीर ने बुरा समूह बना लिया। अच्छा अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत हो, आई स्वेयर आज से वो मेरी भाभी है, अब खुश? गुड, अर्णव ने हामी भरी और एक बार फिर आइडिया सोचने लगा। कुछ देर बाद अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी नज़रें कबीर पर ठहर गईं। कबीर, कल तो सृष्टि का भी बर्थडे होगा, तू सृष्टि के लिए क्या कर रहा है? मुझे उसके लिए ज्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसों की लालची है। एक रिंग गिफ्ट कर दूंगा तो उसमें भी खुश हो जाएगी, पर फिर भी मैंने कल के लिए कुछ खास प्लान किया हुआ है जो हमें हमारे मकसद के एक और कदम करीब ले जाएगा। कबीर ने रहस्यमयी मुस्कान लबों पर सजाते हुए जवाब दिया, फिर शरारत से आंखें चमकाते हुए बोला, तू मेरी छोड़ और अपनी सोच, तेरी वाली तो बाकी लड़कियों से बहुत अलग है, तू क्या करेगा? वो मैंने सोच लिया है, उसकी चिंता तुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं। अर्णव ने भी कुटिलता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पर कबीर को ये नहीं बताया कि वो करने वाला क्या है। कबीर मुंह बनाते हुए नाराज होकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अर्णव ने माधुरी को कॉल लगा दिया। दो तीन रिंग के बाद ही माधुरी ने उसका कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, हेलो माधुरी। यस सर। माधुरी, तुम्हें मेरा एक काम करना है जो बहुत अर्जेंट है। माधुरी जो ऑफिस से निकल चुकी थी, उसने अर्णव की आवाज़ में झलकती गंभीरता को महसूस करते हुए सवाल किया, कैसा काम? अर्णव ने उसे कुछ समझाया, फिर गंभीरता से आगे बोला, उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना काम समझ गई होगी। एक घंटे का वक्त है तुम्हारे पास अपने काम को पूरा करने के लिए। काम हो जाएगा सर, माधुरी ने जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। अर्णव के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई और आंखों के आगे धृति का चेहरा उभर आया। आज माधुरी घर नहीं आई थी। अर्णव का काम पूरा करने में ही उसे कुछ वक्त लग गया था, जिसके बाद अर्णव ने उसे घर जाने को कह दिया था। अर्णव जब घर आया तो रोज की तरह धृति अपने काम में लगी थी। नई जिम्मेदारी के साथ वो एक पत्नी होने की सभी जिम्मेदारियां निभाती थी, बिल्कुल पहले जैसे। अर्णव ने बहुत बार उसे रोकना भी चाहा, पर धृति नहीं मानी। आज भी उसके आने से पहले उसने अर्णव की जरूरत का सब सामान बेड पर सजाकर रखा हुआ था और किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। डिनर के बाद वो उस कमरे में चली गई जहां वो अपना काम करती थी। अर्णव कुछ देर तक उसका इंतजार करता रहा। देखते देखते रात के 11 बज गए, पर धृति वापस कमरे में नहीं आई। अक्सर वो ऐसा ही करती थी, डिनर के बाद काम में लगती तो उसे वक्त का एहसास ही नहीं होता था और आखिर में अर्णव को उसे लेने जाना पड़ता था। आज भी वही हुआ। अर्णव इंतजार करते करते थक गया और आखिर में उसे ही उठकर वहाँ जाना पड़ा। वो उस बड़े से रूम में पहुँचा जहाँ धृति अपना काम करती थी, तो धृति मैनेकिन के पास खड़ी अपनी हथेली को ठोड़ी पर टिकाए और नाखून को दांतों से चबाते हुए कुछ सोच रही थी। धृति, अभी तक तुम यहाँ क्या कर रही हो? घड़ी देखी, 11 बज चुके हैं, इतनी रात हो गई है, सोने चलो। धृति जो उस मैनेकिन को पहनाए आउटफिट को देखते हुए कुछ सोच रही थी, अचानक आई अर्णव की आवाज़ सुनकर उसने चौंकते हुए पलटकर उसे देखा। तब तक अर्णव उसके बगल में आकर खड़ा हो चुका था। अब आंखें बड़ी बड़ी करके मुझे क्या देख रही हो, चलो कमरे में, अभी सोओगी नहीं तो सुबह वक्त पर आंख नहीं खुलेगी। धृति जो शौक से उसे देखने लगी थी, उसकी बात सुनकर उसने हड़बड़ाते हुए उस पर से निगाहें फेर ली। बस मेरा काम होने वाला है, फिर चलूंगी सोने। धृति, बाकी काम कल कर लेना, अभी सोने चलो, अर्णव ने अब जरा सख्ती से अपनी बात कही। धृति ने नजरें घुमाकर उसे देखा और उसके चेहरे पर मौजूद सख्त भाव देखकर गंभीरता से बोली, नहीं, वक्त बहुत कम है मेरे पास और छोटे बड़े बहुत से काम रहते हैं। अभी आपका दिया टाइम खत्म हो उससे पहले मुझे अपना काम खत्म करना है, इसलिए मुझे परेशान मत कीजिए। आप जाकर सो जाइए, मैं अपना काम निपटाकर आ जाऊंगी। अब तुमने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है, प्यार से तो तुम मेरी बात सुनोगी नहीं, तो अब मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी, अर्णव ने कठोर लहजे में कहा। और इससे पहले कि धृति उसकी बातों का मतलब समझ पाती, अर्णव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके अचानक ऐसा करने से धृति चौंक गई। गिरने के डर से उसने हड़बड़ी में उसकी गर्दन पर अपनी बाहों को लपेट दिया और आंखों की पुतलियां फैलाए घबराई हुई सी बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, नीचे उतारिए मुझे। बिल्कुल नहीं, तुम्हें मैंने इतनी बार प्यार से चलने को कहा पर तुम मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, तो अब यही एक रास्ता बचा है मेरे पास और तुम अब सीधे कमरे में जाकर ही मुझसे आज़ाद हो सकोगी, इसलिए अपनी ये कोशिशें बंद करो। धृति को उतरने के लिए छटपटाते देखकर अर्णव ने सख्त लहजे में अपनी बात कही और पल भर उसे घूरने के बाद दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। धृति जानती थी अर्णव को, अपनी जिद के आगे वो किसी की नहीं सुनता था और उस पर जोर आजमाने का भी कोई फायदा नहीं था, इसलिए अब धृति खामोश हो गई और बच्चों जैसे मुंह फुला लिया। आगे बढ़ते हुए अर्णव ने एक नज़र उसे देखा और उसकी क्यूट सी शक्ल देखकर उसके लब अनायास ही मुस्कुरा उठे। उसने धृति को कमरे में लाकर बेड पर बिठाया तो धृति झट से उससे दूर सरक गई और मुंह फुलाए सर झुकाए बैठ गई। अर्णव उसे देखकर मन ही मन हंस पड़ा, फिर प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, बच्चों जैसे मुंह फुलाना छोड़ो और सो जाओ, देखो कितनी रात हो गई है। धृति ने तिरछी नजरों से उसे घूरा, फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए उसकी ओर पीट करके लेट गई। टू बी कंटिन्यूड।